ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। हरे कृष्ण। तो आज के श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंध और अध्याय क्रमांक 29, जिसका शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या और श्लोक क्रमांक 31, इसके ऊपर चर्चा करेंगे।
ततो वर्णश्च तत्वार तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदाग्नो यहत्याग्नोऽभ्यधिकश्चता।
अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मनुष्य में वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है, और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज है। ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का अध्ययन किया है वही सर्वोत्तम है, और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। तात्पर्य। गुण तथा कर्म के अनुसार मानव समाज का चार भागों में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र प्रणाली भारत में वर्तमान जाति प्रथा के कारण दूषित हो चुकी है, किंतु ऐसा लगता है कि यह प्रणाली दीर्घ काल से चली आ रही है, क्योंकि इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता में हुआ है। जब तक मानव समाज में बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के रूप में सामाजिक विभाजन नहीं होगा, जब तक सदैव उहापोह बन रहेगा कि कौन किस उद्देश्य से कर्म कर रहा है। जो व्यक्ति परम सत्य को समझ सके वह ब्राह्मण है, और जब ऐसा ब्राह्मण वेदज्ञ होता है तो वह वेदों का प्रयोजन समझ सकता है। वेदों का प्रयोजन पूर्ण ब्रह्म को समझना है। जो व्यक्ति परम सत्य को तीन अवस्थाओं में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में समझता है, और जो भगवान का अर्थ समझता है वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अथवा वैष्णव माना जाता है। हरे कृष्णा। तो श्री कपिल देव जी माता देवहूति को प्रवचन कर रहे हैं और इस संदर्भ में वो बता रहे हैं कि किस तरह मान और दान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और दान देना चाहिए। एक व्यक्ति या जीवात्मा के स्थिति के अनुसार सम्मान या दान देना चाहिए। और इस संदर्भ में इन कुछ चार पांच श्लोकों में बता रहे हैं कि किस तरह एक जीवात्मा का, जब जीवात्मा शरीर को धारण करता है, उस शरीर के धारण के अनुसार उसको सम्मान देना चाहिए, उनका उन्नत स्थिति कौन सा रहता है, इस चीज के बारे में यहां पर बता रहे हैं। भौतिक संसार के मॉडर्न जो साइंटिस्ट है, उन्होंने जब इस तरह का वर्गीकरण भौतिक संसार में करते हैं तो वो भौतिक विषयों के आधारित पर करते हैं, ना कि चेतना के ऊपर जो कि आत्मा से संबंधित है। एक बहुत बड़ा शास्त्र है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है, पीएचडी भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। इस डिवीजन को बोलते हैं टैक्सोनॉमी, जिसके ऊपर वो विभाजित करते हैं कि संसार में रहने वाले पदार्थों का या जीवात्माओं, आत्मा प्राणियों का किस तरह विभाजन करना चाहिए। तो इसमें जब वो विभाजन करते हैं तो पहले वो शुरू करते हैं जी चेतन वस्तु और अचेतन, जड़ और चेतन वस्तु के साथ शुरू करते हैं। लेकिन जिस तरह जैसे ही शुरुआत करते हैं कपिल देव जी बताने के लिए, तो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे रविवार को राधा गोविंद महाराज जब कथा दे रहे थे तो बता रहे थे कि किस तरह कुछ पर्वत भी है जो कि उसमें जीवात्मा रहती है और वो पर्वत चलते हैं और उसका वृद्धि भी होती रहती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि लेकिन जब भौतिक संसार के ये जो शास्त्रज्ञ हैं, ये जब डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो पहले विभाजित करते हैं कि जड़ और चेतन, और ये पर्वतों को ये जड़ के विचार में लेते हैं और भूमि, जल, अग्नि इत्यादि चीजों को जो भौतिक प्रकृति के मूलभूत आधार है, इन चीजों को भी वो अचेतन मानते हैं। जहां कि हम समझते हैं कि भूमि एक स्वयं देवी है और अग्नि देवता है और समुद्र देवता है। इस तरह जब भौतिक संसार में लोग अपने मन भावना से कुछ चीज को समझने की कोशिश करते हैं, दे विल बी डिफीटेड, वहीं पर उनका पराभव हो जाता है। जैसे समझ लीजिए, अगर आप कुछ गणित कर रहे हैं, गणित में कुछ समस्या का समाधान कर रहे हैं, अगर वो प्रश्न समस्या ही आप गलत ले लिया तो उसके ऊपर आप कितना भी फॉर्मूला को प्रयोगित करके उसका उत्तर निकालेंगे, उसका समाधान गलत ही रहेगा, क्योंकि उसका जो प्रश्न को अप्रोच करने का जो तरीका है, वो प्रश्न को समझने का जो मूलभूत आधार है, वही गलत है। तो इस तरह भौतिक संसार में जब लोग कुछ चीजों को अपने इंद्रियों के आधार पर समझना चाहते हैं, वो दे विल बी डिफीटेड, उनका पराभव वहीं पे हो जाता है। लेकिन यहां पर जब कपिल देव जी इस चीज के बारे में बता रहे हैं, हरे कृष्णा, जब कपिल देव यहां पर विभाजन करना शुरू करते हैं तो वो तुरंत चेतन और अचेतन वस्तुओं में से जीवात्मा के साथ विभाजन करना शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारा परफेक्ट साइंटिफिक नॉलेज मिलता है, सही वैज्ञानिक ज्ञान यहां पर मिलता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे मायापुर में, जो कि अभी नया मंदिर बन रहा है, किस तरह वो भौतिक वादी लोगों के लिए बताना चाहते कि श्रीमद भागवत पुराण में जो दिया गया ज्ञान वो वैज्ञानिक है, उस चीज को वो बड़ा बिल्डिंग को बना के, जो वैदिक प्लानिटोरियम को बना के भगवान प्रभुपाद जी वो भगवान की सृष्टि के विचारों को दिखाना चाहते थे। तो इस तरह श्रीमद भागवत पुराण अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है। इसमें इसको समझने के बाद या इसको अपने हृदय में पाने के बाद अन्य कुछ चीज को पाने की जरूरत नहीं है। जो चीज को श्रीमद भागवत के पहले स्कंद में बताया जाता है, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत स्नानम सतम वेद्यम वास्तवम अस्त्र वस्त्र शिवधम। वेद्यम वास्तवम अस्त्र वस्त्र शिवधम, इसमें जो सत्य है उस चीज को बनाया गया है, और जो अधर्म है, धर्म प्रोजित कैतव धर्म, जो धर्म नहीं है, जो अधर्म है, जो जीवात्मा को इस संसार में भटकने के लिए कारण है, उस अधर्म को इस भागवत पुराण में निकाल दिया गया है। श्री प्रभुपाद जी इसको जब बताते हैं तो बताते हैं कि झाड़ू लेके निकाल दिया गया है। तो इतना क्लियरली इस भागवत पुराण में बताया गया है कि किस तरह श्रीमद भागवत पुराण में अल्टीमेट ज्ञान, मतलब सर्वोत्तम ज्ञान दिया गया है, और सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझने की विधि बताई गई। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भागवतम प्रमाण ममलम, श्रीमद भागवतम पुराण ममलम प्रेमा पुमावतमान, श्रीमद भागवत पुराण एक प्रमाण है कि भगवान और भगवान के भक्ति और भगवान के भक्तों के बारे में जानने के लिए। तो इस संदर्भ में कपिल देव जी बता रहे कि किस तरह मनुष्यों में वह समाज सर्वोत्तम है, ततो वर्णश्च चत्वारस। अभी मनुष्यों तो प्राणियों से लेकर फिर प्राणियों के बाद उसमें चतुष्पादा, चतुष्पादा के बाद द्विपादा, द्विपाद के बाद उसमें भी मनुष्य, मनुष्य का वर्गीकरण करने के बाद मानव या मनुष्य जाति या मनुष्य समाज उसी को माना जाता है जब ये समाज चतुर्वर्णों को फॉलो करता है, मतलब चार वर्णों को और आश्रमों को पालन करता है। ततो वर्णश्च चत्वारस तेषां ब्राह्मण उत्तमः, और वो चतुर्वर्णों के बाद उनमें से उत्तम कौन है, ब्राह्मण लोग उत्तम है, और वो समाज ब्राह्मणों को उन्नत स्थिति देती है, उन्नत उच्च स्थान देती है, वो स्थान, वो स्थिति, वो समाज, वो मानव समाज, वो मानव, सभी मानव समाजों में से सर्वोत्तम है। और उसके बाद उस ब्राह्मण समाजों में जो कि मनुष्य समाज में उन्नत स्थान को प्राप्त किए हैं, उनमें से वो लोग जो ब्राह्मण है वो है जो कि वेद के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वेद के ज्ञान को जानते हैं। ब्राह्मणों स्वपि वेदाग्नो, वेद के ज्ञान को जान सकते हैं। ये अर्थज्ञो अध्यापिकस्तदः, उनमें से सर्वोत्तम वो लोग हैं जो लोग वेद के ज्ञान को या उसके निचोड़ को जानते हैं। तो भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि जैसे श्री प्रभुपाद जी में तात्पर्य में उल्लेख कर रहे हैं कि वेदश्च सर्वरहमेव वेदा वेदांत कृत वेद विदेव च अहम्। भगवान बताते हैं कि वेदश्च सर्वर अहमेव वेद्या, सारे वेदों में से मुझे आपको जपाना है, मुझे आपको जानना है, ये चीज को भगवान भगवद्गीता में बताते हैं। और वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, और वेदों का रचयिता करने वाला मैं ही हूं, और वेदों के द्वारा सार के रूप में आपको भार मिलने वाला चीज मैं ही हूं। तो इसी विषय को यहां पर बताते कि जो व्यक्ति इस वेद के सार को जान सकता है, ये व्यक्ति, ये ब्राह्मण सर्वोत्तम है उनमें से जो कि वेदों के ज्ञान को जानते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते कि किस तरह चतुर्वर्ण का इस समाज में महत्वपूर्ण महत्वता है। जनरली हम अगर किसी व्यक्ति को बताते कि इस समाज में चार वर्णों का विभाजन होना चाहिए, लेकिन भौतिक संसार के जो प्रभुपाद वैसे उल्लेख भी करते हैं तात्पर्य में कि किस तरह भौतिक संसार में अगर लोग चतुर्वर्णों को विभाजित करते हैं तो उसका आधार वो समझते हैं कि एक कैस्टिज्म है, मतलब वो समझते हैं कि ये व्यक्ति के जन्म के ऊपर, जिस अगर ये ब्राह्मण में जन्म लिया तो ये ब्राह्मण है, वैश्य में जन्म लिया तो वैश्य है, इस तरह लोग समझते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं कि चतुर्विधा चातुर्वर्ण मना सिस्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान बताते भगवद गीता में कि चार वर्णों को भगवान बताए, वर्ण और आश्रम को बताए कि किसके आधार पर, उनका आधार है कि गुण और कर्म, उन लोगों के गुणों के आधारित पर वो जीव, जब जीवात्मा शरीर को धारण करती है, खास करके मनुष्य शरीर को, उस मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद उनके गुण और कार्यों के आधारित पर उनको विभाजित किया जाता है। जो लोग सत्व गुण में रहते हैं उनको ब्राह्मण किया जाता है, कहा जाता है, वो ब्राह्मण के वर्ग में आते हैं। जो लोग रजोगुणी है वो क्षत्रिय में आ जाते हैं। जो लोग रजोगुण और तमोगुण से मिले हुए हैं और वैश्य प्रवृत्ति में आते हैं, और जो लोग तमोगुणी में हैं वो आते हैं शूद्र के प्रवृत्ति। ये तो संपूर्ण रूप से गुण और कर्म के आधारित पर लिया गया है और इसको जन्म से लेना कोई संबंध नहीं है। जिस तरह पंचरात्र में कहा जाता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विजा, ब्रह्म जाना इति ब्राह्मण, वेद पाठ इति ब्रह्म, ब्रह्म जाना इति ब्राह्मण। तो जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं और इसके बाद उनको इस तरह का संस्कार मिलता है और उनके गुण और कर्म के आधार पर उनको इस तरह का वर्गीकरण किया जाता है। और इस तरह का वर्गीकरण करने के बाद एक व्यक्ति, एक जीव को एक आधार मिल जाता है जिस आधार से वो कार्य कर सकता है। क्योंकि जब भगवान का भक्ति कोई करना चाहता है, भगवान का भक्ति तीनों गुणों से परे है। भगवान भगवद गीता में बताते कि जब तक कोई व्यक्ति तीनों गुणों से परे नहीं होता तब तक भगवान का भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। तो भगवान के भक्ति के स्थान को, भगवान के प्रति भक्ति को प्राप्त करना है तो व्यक्ति को गुणों से परे होना पड़ता है। लेकिन ये गुणों से परे कैसे हो सकता है, जब जिस गुणों के द्वारा वो अपने अपने जीवन में जिस गुण को प्राप्त किया है संस्कार के द्वारा और जन्म के द्वारा, उन गुणों में स्थित होते हुए अगर वो उन गुणों के अनुसार कार्य करते जाएंगे तो उसके साथ वो धीरे धीरे प्रगति करके वो गुणों से परे होकर, वो सत्व गुण और उससे भी परे होकर भगवान के भक्ति के स्तर को, शुद्ध सत्व गुण को प्राप्त कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि नहीं, वर्णाश्रम सिस्टम आजकल के जमाने में संभव नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि समझ लीजिए, ये साइंटिफिक नॉलेज है। जैसे समझ लीजिए कोई एक संस्था चलाना है या कोई ऑफिस चलाना है तो उसमें रहते हैं ना, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हैं, उसके बाद जो वर्कर्स काम करने वाले रहते हैं और उसके बाद उसको ऑफिस को मेंटेन करने वाले रहते हैं। अगर सभी लोगों को बताया जाए चलिए आप ऑफिस में जाके काम कर लीजिए तो पता नहीं चलेगा कौन क्या काम करेगा, है ना, तो सबको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसी तरह अगर समाज को बनाए रखना है तो समाज को बनाए रखने के लिए हर एक व्यक्ति को इस वर्णाश्रम स्थान पर आधारित करना है। लेकिन वर्णाश्रम पालन करना ये अल्टीमेट नहीं है। जिस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से वार्तालाप करते हैं दक्षिण भारत में, तो उस समय वो वर्णाश्रम स्थिति को वो इह बाह्या करके बताते जाते हैं। इसके लिए बहुत कारण है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में बहुत सुंदर तरह से व्याख्या करते हैं। इससे पहले हम बताएंगे वर्णाश्रम सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे समझ लीजिए, वर्णाश्रम सिस्टम हम बता रहे थे एक स्थान है जिसके द्वारा आप भगवान के भक्ति के स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। एक जैसे समझ लीजिए एक वाहन है, आप एक वाहन को खरीदते हैं, ठीक है। आप वाहन को खरीदने के बाद आप वाहन को किस तरह मेंटेन करना है और उसको किस तरह चलाना है, ये सारे चीजों को बताया जाता है। आप वाहन ले लिए, उसको किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह रखना है, सफाई करना है, ये सब जान लिए। लेकिन इसका अंत यहां पर नहीं होता। इसका अंत तब होता है इस वाहन को इस्तेमाल करके हमको जहां पर जाना है, जहां गम्य स्थान को हमको प्राप्त करना है वहां पर जाने की कोशिश करना चाहिए। नहीं हम नया कार ले लिया, घूमते रहे, पता नहीं कहां जा रहे, क्या कर रहे पता नहीं, गाड़ी को अच्छी तरह मेंटेन कर रहे सिर्फ घूम रहे, तो क्या फायदा हो गया उसका। तो इस तरह अगर व्यक्ति वर्णाश्रम स्थान पर सिचुएट होता है, स्थिति पर आता है, वो स्थिति से वो परे होकर भगवान की भक्ति को, जो उन्नतम स्थिति है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। वर्णाश्रम चारवता पुरुषे न पर पुमान विष्णु नारदते पंथा नाना तत्व शकारण। रामानंद राय जब बताते हैं कि चतुर्वर्ण चार वर्णों को, चार वर्णों में रहकर विष्णु आराधते, विष्णु को आराधना करना, ये सर्वसाध्य सार जब बताते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यह बाह्य आगे कहो आ रहे, ये तो बाह्य स्थिति है। तो वो आगे चल के बताते हैं कि कर्म मिश्र भक्ति यत करोषि यदश्नाशि यज्जुहोषि ददाति यत तपस्सि कौन्तेय तत्कुदुर्ष्वम अदर्पणम्। कर्म मिश्र का भक्ति के बारे में बताते हैं। जब वो कर्म मिश्र की भक्ति के बारे में बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु इसको बताते यह बाह्य, तो वो आगे चल के बताते कि ज्ञान मिश्र भक्ति में ज्ञान के साथ जब भगवान के प्रति वो कोई शरणागत करते हैं तो वो सर्व साध्य सार है। तो चैतन्य महाप्रभु इसको भी मना करते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि ज्ञान शून्य भक्ति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजा। तो इस चीज को बताते कि महाप्रभु बोलते ना इससे भी आगे बताइए। चैतन्य महाप्रभु जहां की सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान स्वयं बताए हैं और पद्म पुराण के जो श्लोक है भगवान स्वयं बताए हैं और भगवद गीता के जो श्लोक है भगवान स्वयं बताए। भगवान जब चीजों को स्वयं बताए हुए है तो उन चीजों को नकार क्यों रहे है भगवान। इसको आगे चलने के बाद ज्ञान शून्य भक्ति के बाद वो बताते हैं कि ज्ञाने प्रयास मुदपासन मंते जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगताम धनुमान मनोभीर ये प्रयास अजित अजित जतोपि अपित त्रिलोक्यम। जब वो बताते हैं कि ये ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा को त्याग कर अगर भगवान के बारे में श्रवण करना कोई शुरू करता है तो वो सर्वसाध्य सर। जब इस स्थान पर आता है तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु बताए ये है या आगे करो आ रहे वो बताते ये तो है। तो मतलब यहां से चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के जो बताते हुए सर्वसाध्य सार के चीजों को एक्सेप्ट करना स्वीकार करना शुरू करते हैं। इसके बाद वो आगे चल के कहते हैं कि किस तरह प्रेमा भक्ति को पालन करना चाहिए, किस तरह अंत में भगवान श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त करना चाहिए, इस चीजों के बारे में वो आगे चल के बताते हैं। इस श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में बताते हैं कि जब तक व्यक्ति वर्णाश्रम स्थान पर रहकर और भगवान के प्रति श्रवण करने का प्रति अपना इच्छा और अपना रुचि जागरण नहीं करता तब तक व्यक्ति साधना भक्ति के लेवल पे चलते रहता है। जब तक ये साधन लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमको आया साधना भक्ति को देने के लिए नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु हमको देने के लिए आया प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति और अंतिम तर में भगवान के प्रति विदा होकर जो कि उन्नत कोटि की भगवान के प्रति भक्ति करने का जो स्थिति है उस स्थिति को बताने के लिए। नमो महावदन ने कृष्ण प्रेम प्रदाते, उस कृष्ण प्रेम को बताने के देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। जब अगर वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं संसार में आने के बाद अगर पहले से ही इन चीजों को स्वीकृत करना शुरू करेंगे तो महाप्रभु का इस संसार में आने का फल या संसार में आने का कारण पूरी तरह से समाज को पता नहीं चलेगा। जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रेमा भक्ति के विषय के बारे में जानने के बाद उस चीजों को मानना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि साधना भक्ति से देने के लिए नहीं, भगवान हमको प्रेम भक्ति देने के लिए आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला का जब श्रवण करेंगे हम, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के बारे में हम जानकारी या उसके बारे में श्रवण करेंगे तो भगवान स्वयं विचार किए गोलोक वृंदावन में कि मैंने इस सारे संसार में लोगों को दिया क्या दिया, मैंने सारे संसार को बता दिया भगवद्गीता के द्वारा मेरे प्रति शरणागत करो मेरे प्रति भक्ति करो, लेकिन मैं लोगों को बताया नहीं किस तरह मेरे प्रति भक्ति करना चाहिए और मैं लोगों को बताया नहीं कि मेरे तरफ भक्ति करने के द्वारा आप किस तरह आनंद को प्राप्त करेंगे और मेरे साथ आप भक्ति में रहने के बाद आप किस तरह आनंद को प्राप्त करेंगे, ये मैंने चीज बताया नहीं। और ये बिकॉज मैं उन्नत कोटि की स्थिति में हूं और मैं इस सारे संसार के कारण हूं और जब तक मैं इस चीज को पालन करके नहीं बताऊंगा तब तक सामान्य जगत इस चीज को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गोलोक वृंदावन से श्री कृष्ण महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के स्वरूप को भाव को ग्रहण करके श्री कृष्ण भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो महावदन्य के रूप में इस संसार में आए। तो संसार में आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्य न शूद्रो ना हम वर्णी च न गृहपति नो वानस्तो इतिर्वा किंतु प्रोद्धम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर गोपीर भर्तुर पद कमलय और दास दासा अनुदासा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सारे वर्णों को आश्रमों को त्याग दिया और उन्होंने क्या किया बताया कि गोपीर भर्तुर पद कमलय और दास दासा अनुदासा मैं इतना ही चाहता हूं मेरे भगवान कि मैं आपके गोपियों के चरणों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास बन के रहना चाहता हूं। श्रीला सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज जब मुकुंदमाला स्तोत्र में एक श्लोक के ऊपर लिखते हैं। ये श्लोक कुलशेखर आलवाड़ी बताते हैं कि हे भगवान, अगर आप समझते हैं कि मैं आपके प्रति कुछ भक्ति किया हूं, अगर आपके प्रति मैं कुछ भक्ति किया है, तो आप मुझे ये समझ ये कर ये मुझे दान दीजिए, ये मुझे कृपा करिए कि मैं आपके भक्तों के प्रति तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य से भृत्य इति माम स्मरण लोकनाथा। इस तरह वो सात बार भृत्य भृत्य भृत्यश्च भृत्य भृत्य ऐसा करके बताते हैं। तो इसमें सत्सरदास गोस्वामी बताते हैं कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के पास अच्छे गोस्वामी के बाद और उसके बाद सेकंड जनरेशन है जो श्यामानंद प्रभु और जीव गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर और इनके बाद फिर भक्ति विनोद ठाकुर और गौरकिशोर बाबा जी, इन सारे को लाइन में देखे जाते लगातार रहता ऐसा लगता है कि हम सातवें जनरेशन में है। तो सातवें जनरेशन में अगर हम है तो हम सही जगह पर है कि हम सारे वैष्णवों के दासों के दास बन के रहने के लिए हम सही स्थिति पर हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में जब आए तो वो किस तरह दिखाए कि सारे संसार में वो प्रेमा भक्ति देने के लिए आए। जब व्यक्ति वर्णाश्रम के आधार वर्णाश्रम पे स्थित होकर अपने गुणों से परे होने की कोशिश करके भक्ति के द्वारा और उसके बाद और भगवान के प्रति भक्ति को जागृत करता है अपने हृदय में, तब वो वर्णाश्रम को त्याग सकता है। अगर तब तक जब तक एक व्यक्ति भगवान के प्रति रुचि को प्राप्त नहीं करता तब तक व्यक्ति को वर्णाश्रम की स्थिति पर रहना ही चाहिए। वरना एक व्यक्ति अपने जीवन में स्मृति श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रि के विधि बिना एकांतिकारे भक्ति उत्पात एव कल्पते, अपने जीवन में उत्पात मचाएगा, ना कि सिर्फ अपने जीवन में अन्यों के जीवन में भी उत्पात वो मचाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन को हमको एस्टेब्लिश करना है। ये इसलिए कि इसके द्वारा व्यक्ति मनुष्य के स्तर पर आता है। अभी देखिए सारे संसार में लोग मनुष्य अभी मनुष्य के क्या राक्षस के स्थिति पर है। आप देखेंगे लोग किस तरह व्यवहार करते हैं, किस तरह रहते हैं अपने। अगर भगवद्गीता के आप 16वें अध्याय को पढ़ेंगे उसमें से श्री भगवान बताते हैं किस तरह की आसुरी गुण है। तो इस आसुरी प्रवृत्ति के कारण लोग विचलित रहकर जीवन के लक्ष्य को भूल चुके और काम और क्रोध लोभ रजोगुण और तमोगुण में रहकर अपने जीवन को लक्ष्य को भूल कर वो मनुष्य के स्तर से भी नीचे गिरे हैं। उन लोगों को मनुष्य के स्तर पर लाना चाहिए और ये वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही हो सकता है। उसके बाद वो भक्ति को करने के लिए योग्य बन जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए और श्री जगाई मदाई को उद्धार किया, जगाय मदाई को उद्धार करने के बाद जगाय मदाई बताने लगे कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय है। श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर इतना सुंदर तरह से बताया किस तरह जब जगाय मदाई को उद्धार करने के बाद जगाय मदाई जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में रहकर महाप्रभु का गुणगान करने लगे और महाप्रभु को जय जयकार करने लगे और वो महाप्रभु को बोलने लगे कि महाप्रभु आपकी आप अभी तक जितने भी लीला किए हैं आप उन सारे लीलाओं से आपका जो ये महावदन्य लीला है, जो आपका ये चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है, ये लीला सर्वोत्तम है और इस लीला में जो कृपा आप दे रहे हैं वो सर्वोपरि है और इस तरह का कृपा आपने सारे संसार में कभी भी दिया नहीं है। तो एक के बाद एक बताने लगते हैं, बताते हैं कि किस तरह आपने अजमेला का उद्धार किया। अच्छा, आपने अजमेला का उद्धार किस लिए किया? अजमेला आपने लड़के का नाम नारायण रखा था और अपने मृत्यु के समय में वो नारायण को नारायण करके नाम विचार कर नारायण का नाम पुकार रहा था। अगर जब वो नारायण का नाम पुकार रहा है तो आप आगे उनका आपके लोग आके आपके जो वैकुंठवासी विष्णुदूत आकर उनको उद्धार किया तो उसमें उसमें आश्चर्य की बात क्या है? क्योंकि वो भगवान का शास्त्र में कहा गया है भगवान का नामस्मरण करने के बाद भगवान स्वयं उनको उद्धार कर देता है। तो शास्त्र के विचार को आपने सत्य बनाया तो इसमें इसमें बड़ी बात क्या है? ये तो सत्य है, ठीक है। लेकिन देखिए जब अजमेला ने भगवान नारायण का नाम लिया तो उनको लेके जाने के लिए विष्णु लोक से चार दूत आए। लेकिन जब श्री चैतन्य महा श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हमको आके पूछा कि भगवान का नाम लो और हमने उनको उनके शरीर पे रक्त आने के कारण जिस तरह रक्त आएगा उस तरह हमने उनके शरीर पे घाव किया और घाव करने के बाद और उनको कष्ट दिया और कष्ट देने के बाद हमको श्री भगवान का दर्शन आपका दर्शन हो रहा है हमको। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन उन व्यक्ति को हुआ जो व्यक्ति अपने भक्तों को स्वयं भक्तों को वो परिश्रम दिया उनको घाव किया उनको कष्ट दिया। जबकि श्री नरसिंहदेव भगवान स्वयं आके इतना क्रोध में हिरण्यकशिपु को वध कर दिया क्योंकि उनको इतना क्रोध था कि तुम मेरे भक्ति के प्रति इतना अत्याचार कर रहे हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतना महावदन्य है हालांकि जब जगाए मगाए उनको कष्ट दिए फिर भी वो आगे उनका दर्शन दिए और दूसरा स्थिति पे जाते हुए बताते कि आप महावदन्य इसलिए है समझ लीजिए गजेंद्र का लीला में आपने गजेंद्र को उद्धार किया। गजेंद्र का उद्धार करने में भी गलत कुछ नहीं किया आपने। पत्रम पुष्पम फलम तो आपने भगवती ने बताया गजेंद्र ने वो तालाब से निकाल के एक फूल कमल फूल को आपको अर्पण किया और आपके प्रति स्तुति करने लगा तो आप स्वयं आके गरुड़ से वाहन के द्वारा आके आप उनको उद्धार किया तो उसमें बड़ी बात क्या है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो उसके और वो बताते कि लेकिन हम जब नित्यानंद प्रभु को घाव किए कष्ट दिए तो आप आए दर्शन दिए इसके साथ साथ जब आपका सुदर्शन चक्र लेके आए आप हमको मारने के लिए नित्यानंद की कृपा से आपने हमको छोड़ दिया। आगे चल के वो बताते अच्छा ठीक है आप बताते हैं कि आपने अपने कृष्ण लीला में और पूतना को उद्धार किया आगा बका इन सब को उद्धार किया इन सब लोगों को उद्धार किया तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं किया क्योंकि ये सब लोग आपका दर्शन स्वयं किए। जब आपका दर्शन स्वयं होगा तो उसका उसका कल्याण हो ही गया और उसको उद्धार करने की बात क्या है। लेकिन इसमें और उसमें हमारे उद्धार में अंतर यह है कि जब उन लोगों को आपने मृत्यु देकर उद्धार किया कि संसार में कोई नहीं देख पाए कि उनका आत्मा किस तरह गोलक वृंदावन में चला गया, लेकिन जब आपने हमको उद्धार किया हमका शरीर का जो काला रंग है वो चला गया और हमारे जीवन में जो पाप करने का प्रवृत्ति चला गया और हमारे हम आप सबके साथ वैष्णव बनकर आप सबके साथ हम मृत्यु कर रहे हैं जो कि लोग साक्षात अपने आंखों से देख सकते हैं। जबकि ये असुरों को मारने के बाद असुर कहां पर चले गए कोई नहीं देख सकता, लेकिन असुर प्रवृत्ति को मार देने के बाद जगाए मजाए के हृदय में सब लोग देख सकते हैं कि जगाए मजाए किस तरह इस भौतिक संसार में वो उन्नत कोटि के भक्त बन गए। तो कुछ लोग कभी बताते हैं कि हमको अगर समझ लीजिए हमको मृत्यु के बाद किसको क्या गारंटी अगर हम भगवत धाम चाहते क्या नहीं, जरूरत क्या है अगर मृत्यु को प्राप्त करने के लिए। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति सिंसियरली भक्ति करना शुरू करता है उसी समय में उनके हृदय में रहने वाले सभी गलत प्रवृत्तियां सब चली जाती है और वैष्णवों के संग में रहकर वो भक्ति करना शुरू करता है। वही जीवंत उदाहरण है कि भगवान के प्रति भक्ति करने से इसी जन्म में इसी खास करके भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में और चैतन्य महाप्रभु के जिस तरह बताए उसी तरह भगवान का नाम स्मरण करके हमारा जीवन उद्धार हमारे जीवन बिताएंगे तो हमारा जीवन इसी मानव जन्म में उद्धार हो जाएगा। हम जब कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन में तो राधाचरण प्रभु की जो गौर निताय थी तो उसको भी लेकर कोई भक्त डांस कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि देखिए हम इसी जगत में अभी हम भगवान के कीर्तन गाते हुए नृत्य कर रहे हैं और उसी कीर्तन में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वयं डांस कर रहे हैं और इससे बढ़कर और हमको क्या चाहिए, है ना। तो इसी तरह अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाएंगे और श्रील प्रभुपाद के जो बताए हुए चीजों को जीवन में पालन करेंगे हमको आशा है कि इसी जगत में इसी आशा क्या इसी भौतिक शरीर से हम देख सकते हैं कि हम किस तरह मुक्त हो चुके हैं और इतने सारे भक्त लोग मुक्त हो चुके हैं जिस तरह श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में जाकर इतने सारे मलेच्छों को और यवनों को वैष्णव बना दिया। हरे कृष्ण। तो किसी को कुछ प्रश्न है तो बता सकते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।